आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। शास्त्रकारों के अनुसार 50 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के बाद व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। वानप्रस्थ आश्रम का शाब्दिक अर्थ है वन की ओर प्रस्थान करता। इससे स्पष्ट होता है कि वानप्रस्थ आश्रम वह आश्रम है जिसमें व्यक्ति अपने परिवार और कुल को छोड़कर निर्लिप्त भाव से संपूर्ण समाज को अपना कुटुंब समझकर उसकी सेवा करता है। वानप्रस्थी का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह जंगल में एक कुटिया का निर्माण करे, उसमें रहे, भूमि पर सोए और सभी प्राणियों की रक्षा करे। मनु का कथन है कि गृहस्थ जब देख ले कि उसकी त्वचा ढीली पड़ गई है, बाल सफेद हो गए हैं तथा संतान के भी संतान हो गए हैं, तब वह सभी को छोड़कर वन की ओर प्रस्थान करे। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति यदि चाहे तो अपनी पत्नी को साथ रख सकता है। ऐसा संभवतः इसलिए होगा कि व्यक्ति में धीरे धीरे वैराग्य का गुण उत्पन्न किया जाए। गृहस्थ जीवन के पश्चात एकाएक सभी को छोड़ देने से सांसारिक मोह को पूर्णतया समाप्त कर सकना बहुत कठिन है। इसके उपरांत भी इस आश्रम में पत्नी से सहवास करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी गई है। इस आश्रम का कार्य प्रमुख रूप से व्यक्ति को संन्यास आश्रम के लिए तैयार करना है और इसी लक्ष्य के अनुरूप वानप्रस्थी के कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है। वानप्रस्थी के लिए दिन में केवल एक बार भोजन करने का ही विधान है। साथ ही यह भोजन अन्न का न होकर केवल कंदमूल फल से ही संबद्ध होना चाहिए। वानप्रस्थी अपने इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखे और सभी का मुंह छोड़कर सादा सरल तथा पवित्र जीवन व्यतीत करे। कुल्लूक भट्ट के अनुसार इंद्रिय संयम, संसार से विरक्ति, जीवों के प्रति दया, समता का भाव और भिक्षा मांगकर जीविका निर्वाह वानप्रस्थी के प्रमुख धर्म। इस आश्रम में धर्म को प्रमुख स्थान देते हुए कहा गया है कि वानप्रस्थी का कर्तव्य है कि वह वेद उपनिषदों का अध्ययन करे, यज्ञ आदि कर्मों को पूरा करे तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्णतया निर्वाह करे। यह आश्रम भी एक तप है जिसकी पूर्ति के लिए महान साधना की आवश्यकता है। यह तभी संभव हो सकती है जब वानप्रस्थी तप के लिए पैर के अगले हिस्से पर दिन भर खड़ा रहे, ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर और सूर्य की उष्णता से अपने शरीर को तप्त करे, वर्षा ऋतु में भीगते हुए इसी प्रकार खड़ा रहे और हेमंत ऋतु में गीले वस्त्रों को पहनकर एक वर्ष का समय व्यतीत करे। इस प्रकार मनु के अनुसार वानप्रस्थों का सबसे बड़ा धर्म अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना है। गृहस्थ आश्रम के समान वानप्रस्थ आश्रम में भी गौ सेवा, अतिथि सत्कार और अग्नि होम करना वानप्रस्थी के लिए आवश्यक है। देह की रक्षा के लिए वानप्रस्थ में केवल मृग चर्म, बिना सिले वस्त्रों अथवा वक्कल के धारण करने की अनुमति प्रदान की गई है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि वानप्रस्थ आश्रम अध्ययन, चिंतन, संयम, दान, धर्म और जीवों के प्रति दया का जीवन है। हेडिंग: वानप्रस्थ आश्रम का महत्व। वानप्रस्थ आश्रम हिंदू सामाजिक व्यवस्था में इस दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्व है कि इसके द्वारा वैयक्तिक शुद्धता और समाज कल्याण के उद्देश्यों की प्राप्ति एक साथ हो जाती है। वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति ही अपने लंबे अनुभवों और त्यागमय जीवन के द्वारा ब्रह्मचारियों को शिक्षा प्रदान करते थे। इसके फलस्वरूप एक ओर शिक्षा राज्य से दूर थी और दूसरी ओर इसमें नैतिक व मानसिक विकास को सर्वोपरि स्थान मिलता था। पारिवारिक संगठन के दृष्टिकोण से भी इस आश्रम का योगदान अभूतपूर्व रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर वैदिक काल के सामाजिक अध्यवेक्ता युवकों को पारिवारिक अधिकार देने के प्रति अत्यधिक जागरूक थे। 50 वर्ष की आयु में जब गृहस्थ वानप्रस्थी बन जाता था तो स्वाभाविक था कि उसके परिवार की बागडोर उसके युवा पुत्र को प्राप्त हो जाती थी। इसके फलस्वरूप पारिवारिक जीवन में संघर्ष और तनाव की संभावना बहुत कम रह जाती थी। यह आश्रम शिक्षा के प्रसार के दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण था। ऐसा इसलिए कि वानप्रस्थी को ऋण से उऋण होने के लिए ऋषियों से प्राप्त ज्ञान का प्रसार करने के लिए यही सर्वोत्तम समय था। इस महत्वपूर्ण कार्य से निष्काम कर्म की धारणा जुड़ जाने से इसकी उपयोगिता और भी अधिक हो गई। सत्य तो यह है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए मानसिक विकास और सांसारिक चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए क्षेत्र के इस आश्रम ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम, जो निम्न प्रकार है। आश्रम व्यवस्था में संन्यास अंतिम आश्रम है। संन्यासी वह है जिसने संपूर्ण संसार का पूर्णतया त्याग कर दिया हो। जब एक वानप्रस्थी सभी सांसारिक बंधनों का मोह छोड़कर अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब वह संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है। इस आश्रम में व्यक्ति के लिए केवल एक पुरुषार्थ का पालन करना ही शेष रह जाता है, और वह पुरुषार्थ है मोक्ष। इसकी प्राप्ति के लिए सन्यासी को सब कुछ त्याग देना पड़ता है। इस आश्रम में सन्यासी न किसी विशेष स्थान पर रहता है और न ही वह अपने पास कोई वस्तु रखता है, बल्कि वह भिक्षा मांगते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करता रहता है। इसी आधार पर मनु का आदेश है कि आयु के तीसरे भाग को वन में व्यतीत करके आयु के चौथे भाग में प्रवेश करते ही वह सभी का साथ छोड़कर परिव्राजक हो जाए। इस आश्रम में एक सन्यासी का कर्तव्य है कि वह भिक्षा पर निर्भर रहे, अधिक भिक्षा न मांगे, जो कुछ मिले उसी में पूर्ण संतोष का अनुभव करे, मोटे वस्त्र पहने, वृक्ष की छाया में सोए, किसी का अनादर न करे, आत्मज्ञान की साधना करे, किसी जीव से घृणा न करे, न मोह करे, भोजन केवल प्राण रक्षा के लिए ही करे, प्राणायाम के द्वारा इंद्रियों का हनन न करे और सुख दुख का अनुभव करे। यही सन्यासी के लक्षण है। वास्तव में सन्यास वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति का सामाजिक अथवा सांसारिक जीवन बिल्कुल समाप्त हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि सन्यासी की लौकिक दृष्टिकोण से मृत्यु हो जाती है। इसलिए सन्यास आश्रम में जाने के बाद संबंधी उसकी अंत्येष्टि क्रिया कर देते हैं और स्वयं सन्यासी भी एक दूसरे नाम से पृथ्वी पर विचरण करता है, जिससे पहले जीवन के उसका कोई संबंध न रह जाए। कुछ शास्त्रकारों ने तो इसी आधार पर सन्यासियों के मृत्यु पर दाह संस्कार के स्थान पर समाधि संस्कार का विधान रखा है, क्योंकि सन्यासी की अंत्येष्टि तो पहले ही हो चुकी होती है। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि सन्यास आश्रम का संसार में रहते हुए भी परलौकिक जीवन में प्रवेश करना है। आश्रम व्यवस्था के अनुसार सामान्य नियम तो यही है कि व्यक्ति ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम के दायित्वों को पूरा करने के पश्चात ही सन्यास आश्रम में प्रवेश कर सकता है। लेकिन मनु, याज्ञवल्क्य और जबाली का मत है कि यदि व्यक्ति ने गृहस्थ आश्रम में ही अपने इंद्रियों को पूर्णतया नियंत्रित कर लिया हो तो वानप्रस्थ आश्रम के बिना वह सीधे सन्यास आश्रम में प्रवेश कर सकता है। हेडिंग: सन्यास आश्रम का महत्व। कुछ व्यक्तियों का विचार है कि सन्यास आश्रम आत्मिक विकास के क्षेत्र में अवश्य महत्वपूर्ण है, लेकिन संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के लिए यह बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। अन्य सभी आश्रमों में व्यक्ति समाज की कुछ न कुछ सेवा अवश्य करता है, लेकिन सन्यास आश्रम में व्यक्ति का समाज से कोई योगदान नहीं रह जाता। हमारी सांसारिक विशेषताओं के संदर्भ में यह आलोचना उचित नहीं है। भारतीय संस्कृति सदैव से ही आध्यात्मिकता को सर्वोच्च स्थान देती आई है और मानवतावादी विचारधारा इसकी सबसे अमूल्य निधि रही है। सन्यास आश्रम उसी विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें वसुधैव कुटुंबकम के महान लक्ष्य की पूर्ति होती है। यदि मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन भर विषय भोग और स्वार्थ में डूबा रहे, तब मनुष्य और पशु में अंतर ही क्या है। सन्यास आश्रम इस संकुचित सीमाओं के ऊपर है। सन्यास की सामाजिक उपयोगिता को स्पष्ट करते हुए श्री कपाड़िया का कथन है कि वास्तव में वह सन्यासी अपनी विस्तृत मानवीयता सहित समाज को भली प्रकार प्रभावित करने और मार्गदर्शन करने के योग्य होता था। यह व्यवहारिक रूप से जंगल में नहीं रहता था, बल्कि ग्रामों का भ्रमण करता था तथा अपने स्वयं के उदाहरण और शिक्षाओं के द्वारा समाज को सद्वृत्तियों की ओर प्रोत्साहित करता था। उसने अपनी मानवता से उनका कभी तिरस्कार नहीं किया जो उसके पास मार्गदर्शन प्राप्त करने की इच्छा से गए। जीवन की इस अवधि में उसने जो सामाजिक सेवाएं की, वे आज की भांति व्यवस्थित या समन्वित तो नहीं, परंतु वह एक श्रेष्ठ पुरुष था जिसके समकक्ष व्यक्ति स्वतः ही झुक जाता था, जो उसके जीवन और मस्तिष्क पर एक अमिट छाप छोड़ जाता है। इस कथन से सन्यास आश्रम का सामाजिक महत्वपूर्ण पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है। कुछ विद्वानों का कथन है कि सन्यास आश्रम केवल पलायनवाद की प्रवृत्ति है को स्पष्ट करता है। सभ्यता के विकास के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति समाज में रहकर ही अपने अनुभवों से दूसरों को लाभान्वित करे, भले ही वह भौतिक सुखों को त्याग दे। बौद्ध धर्म का उदाहरण हमारे सामने है, जिसमें सन्यासी समाज में रहते हुए दूसरों के जीवन को सद्मार्ग की ओर ले जाने का प्रयत्न करता है। वास्तव में सन्यास के आदर्श के अनुसार व्यक्ति का यह कार्य वानप्रस्थ आश्रम में पूरा हो जाता है, इसलिए उसे जीवन के अंतिम स्तर में संसार से पूर्णतया पृथक हो जाने की छूट मिलना उचित ही प्रतीत होता है।